रेहान ने अपनी पॉकेट से एक लेटर निकाला जो सादिया ने कभी उसे दिया था। ये साकेत ने नूर के लिए लिखा था। इसे देखकर तुम समझ सकते हो कि नूर वास्तव में क्या चाहती है। अरमान ने लेटर को देखा और उसका मन और उलझ गया। साकेत नूर का कजिन और बॉयफ्रेंड है, रेहान ने कहा। वो सबको लट्टू की तरह घुमा रही है और उसमें तुम भी शामिल हो, और मुझ पर भी वो अपना जादू चलाना चाहती थी। अरमान की आंखों में अब सिर्फ उलझन नहीं बल्कि एक नई समझ और डर भी झलक रही थी। उसके सामने ऐसा कुछ मत कहना वरना वो तुम पर भी हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा देगी, रेहाना ने अरमान से चेतावनी दी। भाई आप क्या कह रहे हैं, अरमान परेशान होकर बोला। अरमान ने रेहान की तरफ देखा। रेहान अपनी बाजू की शर्ट ऊपर करता है और दिखाते हुए बोला, देखो मैं तो बस उसे समझा रहा था और उसने मुझे भी ऑफर कर दिया। नूर के खिलाफ अब इतने सबूत इकट्ठा हो रहे थे कि अरमान जो पहले ही थोड़ा सा उलझन में था, लेकिन अब उसे नूर के करैक्टर पर शक नहीं, यकीन हो गया था कि रेहान ही सच्चा है और नूर झूठी है। रेहान वहां से चला गया और हर तरफ से वो नूर की छवि को बदनाम कर रहा था। हर किसी के बीच उसे अलग थलग कर दिया गया। फैजान, जिसे कई दिनों के बाद छुट्टी मिल रही थी, रविवार को घर जाने का प्रोग्राम बना रहा था। वो अपनी बहन और नूर से मिलना चाहता था, लेकिन जब उसने फ़ोन किया तो उसका फ़ोन उठाया ही नहीं गया। बेल जाती रही लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने नूर और सादिया दोनों को फ़ोन मिलाया लेकिन दोनों में से किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। फैजान इस बात से बिल्कुल अनजान था कि क्या हो चुका था। नूर पूरी रात रोती रही, अकेली और टूट चुकी। ज़ुबैदा बेगम अपनी सोच में डूबी रहीं, मन में चिंता और गुस्से के जटिल भाव लिए। रेहाना बेगम की अपने मन में उलझन और गुस्से के साथ चुप बैठी थीं। सादिया अपनी तरफ की रणनीतियां सोच रही थीं। अरमान नूर को बेवफा समझ चुका था और उसका दिल टूट गया था। वहीं रेहान ने अपनी चालाकी से सभी को नियंत्रित किया और खुद को पाक साफ साबित किया। इस तरह पूरी रात एक अनकही लड़ाई, गलतफहमियां और टूटे हुए भरोसों का जाल बिछा रहा। सुबह हो चुकी थी लेकिन रात की उलझन अभी और ओरिजिनल वाली थी। रेहान ने अपनी आखिरी चाल चलने का फैसला किया, नूर को समझाने और अपने जाल में फंसाने का। इकबाल और सुल्ताना बेगम सुबह सुबह ही उनके घर पहुंच गए थे। उनकी चिंता अपनी बेटी के लिए थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्यों बुलाया गया। रेहान, जो हर हालात में अपने प्लान के मुताबिक चलता था, नूर के कमरे में आखिरी बार गया। उसने धीरे से कहा, आप मेरे कमरे में किस लिए आ रहे हैं, जाइए। नूर थोड़ी गुस्से में बोली, इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें, रेहान ने गंभीर होकर कहा। थोड़ा चुप रहती मैं सब संभाल लेता। सादिया जो अभी उठी थी वो भी नूर के कमरे में आ रही थी, लेकिन अंदर से आई हुई आवाज़ सुनकर वो वहीं ठहर गई, कमरे के बाहर गई। मैं तुम्हारी सच्चाई का सबूत देता, मैं ही सब कुछ संभाल लेता, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी, रेहान गुस्से में बोला। आप जहाँ से चले जाएं वरना मैं अरमान को बुला लूँगी। नूर ने अरमान की धमकी दी थी। उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी ये लगता था कि अरमान उसका साथ देगा। अरमान, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं मानेगा। ऐसा करो, पहले मुझे भरोसा कर, फिर बाकी सब सही कर दूंगा, रेहान बेशर्मी पर उतरा हुआ था। नूर ने फ़ोन उठाने की कोशिश की अरमान को कॉल लगाने के लिए, लेकिन रेहान ने उसके हाथ से फ़ोन पकड़ लिया। मैं वो कर सकता हूँ जो अरमान नहीं कर सकता, रेहान ने धीरे और गंभीर होकर कहा। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही, चले जाओ, नूर ने कहा। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। तुम मेरी हो जाओ, मैं पूरे घर वालों को संभाल लूंगा, मेरी अम्मी को भी और तुम्हारी अम्मी अब्बा को भी, रेहान ने कहा। नूर जाए ऐसा नहीं चाहता था। उसकी ऐसी बातें सुनकर नूर रोने लगी थी। नूर ने रोते हुए कहा, आप दफा हो जाएं यहां से। वहीं बाहर सादिया खड़ी थी। उसने सब कुछ सुना और उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेहान ऐसा कैसे कर सकता था। सादिया के हिसाब से नूर करेक्टरलेस थी और रेहान के बारे में भी उसे शक था, मगर जहां पर तो पूरी तरह से रेहान ही हर बात के लिए जिम्मेदार था। जबकि नूर को रेहान ने फंसाया था वो जान चुकी थी और उसका दिल टूट गया था। आप और आपके घर वाले जो चाहें मुझसे कहें, मगर मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे नज़दीक आने की कोशिश भी मत करना। और सबसे बड़ी बात, अरमान के लिए मैं सिर्फ एक ऑप्शन नहीं हूँ, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। रेहान ने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखा और धीरे कहा, मैं तो समझ गया लेकिन तू नहीं समझी, इस बात का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। बाहर सादिया खड़ी थी और सब कुछ सुन चुकी थी। उसने नहीं देखा कि सादिया दीवार से लगी हुई खड़ी थी चुपचाप। सादिया ने भी अब सब कुछ सुन लिया था। सादिया ने गहरी सांस ली, उसका रंग उड़ चुका था। अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। वो धीरे धीरे वहां से चली गई। रेहान चला गया। इस वक्त नूर कमरे से बाहर आई। नूर की नज़र सादिया पर गई। भाभी, अब तो आपने सब सुन लिया होगा ना, मैं किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की, सब रेहान भाई ने किया है। अब तो आप नहीं कहेंगी ना हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, अब तो आपको माहिरा साथ देना चाहिए, नूर सादिया से कहने लगी। और मगर सादिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप वहां से चली गई। अरमान अपने कमरे से तैयार होकर बाहर निकला, हाथ में सूटकेस था। तुम कहाँ जा रहे हो? जुबेदा बेगम ने थोड़ा चिंता में पूछा। जो कल से इस घर में हो रहा था वो इस बात से बेहद परेशान थी। माहिरा जो हाल ही में वहां आई थी तंज भरे लहजे में बोली, नूर के घर वाले आए हैं, वही तो जा रहा होगा। अरमान ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे साइन वहीं रहते हैं, वहां मुझे तुरंत काम निपटाना है। तो कल क्यों नहीं गए? माहिरा ने पूछा। कल तो फ्लाइट नहीं थी, मैं बस अभी लेता हूँ ताकि टाइम पर पहुंच जाऊं, अरमान ने जवाब दिया और वहां से निकल गया। माहिरा जब उसने अरमान के जाने के बारे में सुना था तो उसे अच्छा लगा, क्योंकि इस कलेश में उसके भाई का जाना उसे सही लग रहा था। शुक्र है, माहिरा ने धीरे कहा, वरना कल जैसे नूर अरमान से बात कर रही थी और जी उसकी तरफदारी कर रहा था, मैं तो डर गई थी कि कुछ और ही समझ बैठी थी। जुबेदा बेगम, जिसे कल रेहान ने पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि नूर अरमान का फायदा उठा रही थी, इस तरह से अरमान का जाना जुबेदा बेगम को अच्छा लगा था कि वो नूर से दूर हो जाएगा। अरमान के जाते ही जुबेदा बेगम ने माहिरा से कहा, इसके लिए लड़की ढूंढो, मुझे इसकी शादी करनी है। मैं तो कहती हूँ कि वो रेहान का दोस्त है ना आफताब, उसकी बहन के साथ इसकी बात चलाते हैं। जुबेदा बेगम को यही सही लगा था कि अगर अरमान की शादी हो जाए तो वो नूर के पीछे जाना छोड़ देगा। माहिरा थोड़ी हैरानी से पीछे हट गई। मॉम, ये अचानक? उसने पूछा। हाँ, और इस बार मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहती, जुबेदा बेगम ने कहा। इंगेजमेंट और अफरा तफरी छोड़ो, हम सीधे शादी रखेंगे, बस यही सही रास्ता है। नूर की अम्मी और अब्बा घर के अंदर दाखिल हुए तो घर का हाल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। इतनी बड़ी जगह, मगर जैसे कोई सांस भी दबा कर ले रहा हो। दोनों आकर सोफे पर बैठ गए, नजरें दरवाजे पर टिकी थीं, शायद कोई आए, कोई बात करे, कोई वजह बताए। जहां तक लग रहा है सब ठीक ही है, नूर के अब्बा ने धीरे से कहा, मगर उनकी आवाज में यकीन कम तसल्ली ज्यादा थी। बिल्कुल, कोई इमरजेंसी होती तो हमें ऐसे चुपचाप नहीं बैठाया जाता। सुल्ताना बेगम की कही हुई बात को दोहराते हुए नूर की अम्मी ने भी खुद को समझाया। उन्होंने मुलाजिमा को पहले ही कह दिया था कि उनके आने की खबर अंदर दे दे।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।